दिन भर तारीख 16 नवंबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए अयोध्या पहुंचे श्री श्री रविशंकर।
काम बहुत कठिन है, आप थोड़ा समय दीजिए, सबको सोचने का समझने का, 3 महीने 6 महीने के अंदर मुझे पूरा यकीन है कुछ अच्छा नतीजा इससे निकला है।
पर क्या कुछ इससे हासिल होगा, करेंगे विश्लेषण। ग्वालियर में बना महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर, सरकार के मंत्री बोले,
सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी विचारधारा है, लोकतंत्र ने चूंकि सभी को अधिकार दिया है और इसलिए अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो कोई करता है उसको कोई रोक नहीं सकता।
राष्ट्रपति मुगाबे को नजरबंद किए जाने के बाद से जिम्बाब्वे में अनिश्चितता का माहौल। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर अयोध्या विवाद सुलझाने की पहल लेकर आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न पक्षकारों और साधु संतों से मुलाकात की। रविशंकर ने कहा है कि अयोध्या विवाद सुलझाना बहुत कठिन है और इसमें 3 से 6 महीने लग सकते हैं। दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में एक 17 साल की छात्रा का अपहरण कर उसका गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। छात्रा रेलवे स्टेशन पर अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जहां 2 लोग उसको बहकाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद छात्रा को एक होटल के कमरे में 10 दिन तक रखा गया और उसका शोषण किया गया। जब होटल के मालिक को मामला संदिग्ध लगा तो उसने पुलिस से संपर्क किया। फ्रांस के विदेश मंत्री जाइन यूई से दारियों ने सऊदी अरब में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी से मुलाकात की है। इससे पहले फ्रांस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी हरीरी फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दारियों ने कहा कि हरीरी जब भी चाहें फ्रांस आ सकते हैं और उनका एक दोस्त के रूप में स्वागत किया जाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि हरीरी सऊदी अरब अपनी इच्छा पर आए थे और वह जब चाहें वापस जा सकते हैं।
الرئيس الحريري عايش في المملكة العربية السعودية بإرادته وهو قدم استقالته।
अल हरीरी अपनी मर्जी से सऊदी अरब में रह रहे हैं, उन्होंने लेबनान लौटने के लिए इस्तीफा दिया है। ये मामला उन पर निर्भर करता है और उन्होंने सुरक्षा को लेकर आकलन किया है, वही हैं जिन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं। ये थे सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर के शब्द। जिम्बाब्वे की सत्ता पर सेना के काबिज होने के बाद इस संकट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें जारी हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और सेना प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नजरबंद मुगाबे कुछ शर्तों पर जोर दे रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति पद से बर्खास्त किए गए एमरसन नांगागवा राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। टोक्यो की एक यात्री ट्रेन के 20 सेकंड पहले चलने पर जापानी ट्रेन कंपनी ने माफी मांगी है। समय की पाबंदी को लेकर यह कंपनी खुद पर गर्व करती रही है। सुकुबा एक्सप्रेस ट्रेन ने वेबसाइट पर एक बयान जारी कर माफी मांगी है। ट्रेन के ड्राइवर ने टाइम चेक नहीं किया था, जिसके कारण ट्रेन 20 सेकंड पहले ही चली गई थी। हालांकि इसको लेकर यात्रियों की कोई शिकायत नहीं आई है। कंबोडिया के सुप्रीम कोर्ट ने देश के एकमात्र मुख्य विपक्षी पार्टी कंबोडियन नेशनल रेस्क्यू पार्टी को भंग कर दिया है। पार्टी पर सरकार हटाने की साजिश रचने का आरोप था, जिसका इसने खंडन किया था। सांसद समेत पार्टी के 100 से अधिक सदस्यों पर भी 5 साल तक राजनीति करने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। पार्टी के नेता मू सोकुओ ने बीबीसी से कहा है कि कंबोडिया में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और अब निष्पक्ष चुनावों की कोई संभावना नहीं है। आज के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी को भंग करने का फैसला किया है। आज की घोषणा के बाद पार्टी के 118 वरिष्ठ सदस्य राजनीति नहीं कर पाएंगे। यह थे सरकारी वकील काइटेक के शब्द। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अधिकतर पुलिस जवान हैं। यह धमाका एक विवाह भवन के बाहर हुआ, जहां एक ताकतवर नेता के समर्थक इकट्ठा थे। उत्तरी बाल्ख प्रांत के गवर्नर अट्टा मोहम्मद नूर वहां मौजूद नहीं थे। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्रिटेन में पुलिस ने बताया है कि जून में ग्रेनफॉल टावर ब्लॉक में लगी आग की घटना के कारण कुल 71 लोगों की मौत हुई है। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमांडर स्टुअर्ट कॉन्डी ने कहा है कि 5 महीने की फॉरेंसिक जांच की गई है। मारे गए लोगों में कई बच्चे और नवजात भी थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत अभिनंदन। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने की कोशिश की हो, पहल की हो। चाहे वो कांची कामकोटी के शंकराचार्य हों या फिर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान की गई कोशिशें हों, लेकिन ये कोई भी कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। इस साल 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और संवेदनशील मसलों का हल आपसी बातचीत से हो। तो एक बार फिर से समझौते के विकल्प पर चर्चा होने लगी। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर मंदिर मस्जिद विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने के मकसद से आज अयोध्या पहुंचे और दिन भर उन्होंने पक्षकारों से मुलाकात की। लेकिन इस दौरान इस विवाद में हिंदू व मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के भीतर का जो द्वंद्व था वो बाहर निकल कर आया। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
अयोध्या जाने से पहले श्री श्री रविशंकर क्या उम्मीद लेकर गए थे ये तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ ये उनकी बातों से साफ समझ में आ गया।
किसी की जीत किसी के हार सामना करना पड़ा और दोनों समुदाय बातचीत के जरिए सौहार्द के जरिए आगे बढ़ेगा तो बड़ी मसाल खड़ी हो सकती है, मगर ये काम बहुत कठिन है। आप थोड़ा समय दीजिए सबको सोचने का समझने का। 3 महीने 6 महीने के अंदर मुझे पूरा यकीन है कुछ अच्छा नतीजा इससे निकला है।
रविशंकर 3 महीने 6 महीने या उससे ज्यादा समय लगने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि करीब 3 हफ्ते बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की नियमित सुनवाई होनी है और तब बातचीत के रास्ते लगभग बंद हो चुके होंगे। अयोध्या पहुंचने पर रविशंकर ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए और इस मामले में सबसे पहले उनकी मुलाकात राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से हुई। नृत्य गोपाल दास के यहाँ कुछ और साधु संत जमा थे, लेकिन मुलाकात के बाद नृत्य गोपाल दास के वक्तव्य ने जाहिर तौर पर श्री श्री रविशंकर की कोशिशों को बड़ा झटका दे दिया।
हमारा उनका पुराना संबंध है, हमारे पुराने प्रेमी हैं। वो राम जन्मभूमि राम मंदिर इत्यादि विषय को लेकर के नहीं आए, वो केवल हमारे प्रेम और स्नेह से मिलने के लिए। राम मंदिर की उन्होंने चर्चा नहीं, केवल उन्होंने ये काम के जो भी हो सौहार्दपूर्ण वातावरण।
बतौर वार्ताकार श्री श्री रविशंकर के अयोध्या आने को लेकर सवाल पहले से ही उठ रहे थे। उनके पहुंचने के बाद भी पक्षकारों के इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया। मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती पूछ बैठे कि रविशंकर आखिर किस हैसियत से वार्ता करने आ रहे हैं।
25 बार जेल में गया, 35 बार में नजरबंद किया गया, लाठी सहा, गोली सहा, कितने कार सेवक घायल हुए, कोठारी बंधुओं ने यहाँ बलिदान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कितने लाखों लोग जेल गए। इन सब के बावजूद भी यदि मंदिर बनाने की बात को लेकर श्री श्री रविशंकर अयोध्या आते हैं तो किस आधार पर? सरकार हमसे वार्ता नहीं करेगी क्या? केंद्र सरकार राम जन्मभूमि न्यास से वार्ता नहीं करेगी क्या? राम जन्मभूमि न्यास को ही इसका हक है और किसी को हक नहीं है।
इस विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से अंतर विरोध पहले से ही दिख रहे थे, जब शिया वक्फ बोर्ड पूरी तरह से राम मंदिर बनाने के पक्ष में उतर आया, लेकिन आज हिंदू पक्षकारों के बीच के भी तमाम विवाद उभर कर सामने आए। निर्मोही अखाड़े ने जहां विश्व हिंदू परिषद पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा बोले,
वही लोग बोल रहे हैं जो कभी आंदोलन नहीं रहे, जिन्होंने कभी गोलियां नहीं खाई, जो कभी किसी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी कार सेवकों के हालचाल पूछने गए हों।
अयोध्या दौरे के अंत में श्री श्री रविशंकर ने मुस्लिम पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी से भी मुलाकात की, लेकिन उनकी नजर में भी इस प्रयास में कोई खास दम नहीं दिखा।
ये थोड़ी ना है कि कोई फार्मूला लेके आए हैं तो हम मान लेंगे। अभी इससे पहले भी जो है नरेंद्र गिरी जी जो है रिजवी को लेके आए थे, तो लखनऊ का फार्मूला लेके आए थे, हम लोगों ने उनको नकार दिया।
बहरहाल तमाम पक्षकार इस पहल में भले ही गंभीरता और कोई उम्मीद न देख रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री श्री रविशंकर शायद नाउम्मीद होकर नहीं गए हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
श्री श्री रविशंकर ने पक्षकारों से बात की, लेकिन अदालत से बाहर समझौते में बड़े पचड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंदिर आंदोलन के नेताओं का एक अलग गुट है, संत महंतों के कई गुट हैं जिनमें आपसी टकराव है, मुसलमानों के बीच मतभेद है, शिया सुन्नी संगठनों के बीच मतभेद है, शियाओं और सुन्नियों के बीच आंतरिक मतभेद है। अब से कुछ देर पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती से संपर्क साधा और पूछा कि क्या इससे पहले की बातचीत के कितने प्रयास हुए और वो सार्थक कितने थे।
प्रयास तो अनंत तरह के हुए हैं जब से केस अदालत में पहुंचा है, क्योंकि ये इतना जुड़ा हुआ मामला है लोगों की आस्था से और इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं। कुछ सरकारी प्रयास भी हुए। लोगों का मानना है कि जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वो महज 4 महीनों तक थे, तब उन्होंने बहुत सारी बातचीत VHP में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच करवाई। नरसिम्हा राव ने भी कई स्टेजेस थी कि कोई इसमें रास्ता निकल आए, लेकिन बस कुछ बात हो नहीं पाए, क्योंकि हर पक्ष को ये था कि जीत जाएंगे केस या हमको पूरा हासिल हो हमारा हक, तो इसलिए बातचीत कभी गई नहीं कहीं।
अब ये जो ताजा मामला है, ये जो श्री श्री रविशंकर ने एक पहल की है, इसके पीछे मतलब क्या ये बात कुछ निकलेगी या ये भी उसी रास्ते गुम हो जाएगी?
देखिए, पहले तो ये स्पष्ट नहीं है कि किसकी पहल पे ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर। ये मशहूर है, इन्होंने अपने कई दफा इस बात का जिक्र किया है कि ये तरह तरह के जो झगड़ालू दो गुट हैं उनमें ये बातचीत करवाते हैं, ऐसा ये चर्चा में खुद इनकी तरफ से आ चुका है कई दफा।
सीमा की जैसे फार्क से समझौता कराने में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाने में श्री श्री रविशंकर थे।
दरअसल वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिसको कहा जाता है, यानी अपनी तरफ से अपनी बात कहना कि हम शांति का वो बात की बात कर रहे हैं, वो रुआंडा में भी हुतूज और तुत्सीज के बीच भी कोई जिक्र था ऐसा, अफ्रीका के कई देशों में भी इनका जिक्र किया गया था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो इनकी बातचीत की बात थी उनसे उन्होंने बात नहीं की है। तो एक बड़ी विचित्र सी बात है कि एक ही तरफ से बात करने पे ये चर्चा में ला दिया जा रहा है कि श्री श्री रविशंकर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी कि उसको मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, सारे जो साक्ष्य हैं सबूत हैं वो उनके हक में हैं और वो केस जीतेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत में उन्होंने कहा है कि हमको तो पता ही नहीं है कि किसकी तरह से मध्यस्थता कर रहे हैं और किस आधार पर। तो ये अच्छा चर्चा का ये विषय अच्छा है। और आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो भी तो इसमें उनकी एक राय है, बहुत स्पष्ट है उनकी राय, तो उसमें वो कोई निष्पक्ष सरकार या किसी तटस्थ गेटकीपर या जो न्यूट्रल हो शख्स, उसकी भूमिका तो है नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 हिस्सों में विभाजित कर दी गई थी एक तरह से जमीन, जो 2010 में अक्टूबर में जो फैसला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसकी अपील की सुनवाई शुरू होनी है 5 दिसंबर को, और ये एक संयोग ही है कि 6 दिसंबर को 25 साल हो जाएंगे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त हुए। लेकिन ये दिलचस्प होगा देखना कि 5 दिसंबर को आखिर होता क्या है।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती जो कि विश्लेषण कर रही थी, और अब नजर 5 दिसंबर पर भी होगी जब ये इस पर फैसले की अदालती कार्रवाई शुरू होगी।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। रुख मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहां पर हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का एक मंदिर बना दिया। ये मंदिर उन्होंने अपने कार्यालय में मूर्ति स्थापित करके किया। इसके चलते मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल है। कांग्रेस चाहती है कि इस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। पेश है शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
ग्वालियर के दौलतगंज में अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यालय पिछले 80 सालों से मौजूद है। इस दफ्तर में 1947 में नाथूराम गोडसे ने 7 दिन बिताए थे। महासभा का कहना है कि उन्होंने 9 नवंबर को प्रशासन को एक पत्र लिखकर नाथूराम गोडसे के मंदिर के लिए जमीन की मांग की थी, साथ ही उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी, मगर उनकी मांग को नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद 15 नवंबर को महासभा ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति अपने ही कार्यालय में स्थापित कर डाली। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष डॉ. जयवीर भारद्वाज ने बताया,
144 घंटे के अंदर, चूंकि 9 नवंबर को हिंदू महासभा के 3 दर्जन कार्यकर्ताओं ने शपथ ली थी कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमने अभी इस भव्य मंदिर बनाने का पूरा कार्य किया है। प्रति मंगलवार शाम 7 बजे अखंड भारत महाआरती इस मंदिर में हुआ करेगी और सारी की सारी भव्यता इसको धीरे धीरे दी जाएगी।
महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद युवा पीढ़ी को इतिहास की सही जानकारी देना है। उन्हें बताना है कि नाथूराम गोडसे एक हत्यारे नहीं, एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अखंड भारत के लिए गांधी जी का वध किया। लेकिन इस मामले को लेकर प्रदेश में कांग्रेस उग्र हो गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में गांधी प्रतिमाओं के पास मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। पार्टी मांग कर रही है कि प्रतिमा को सरकार फौरन जब्त करे और जिन लोगों ने यह किया है उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने बताया,
जिस विचारधारा की सरकार देश और प्रदेश में काबिज है उससे यही उम्मीद की जा सकती है तो नाथूराम गोडसे की न केवल मूर्ति लगाए बल्कि उनकी पूजा भी करेंगे और हुई भी है इस प्रदेश में और देश में, जिसमें एक जगह तो प्रधानमंत्री जी का उनका फोटो पर माल्यार्पण करते हुए फोटो भी प्रकाशित हुआ था। तो कुल मिलाकर एक षड्यंत्र है, इसमें सरकार भी शामिल है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री इस मामले में नपी तुरी जबान में बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य का कहना है,
सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी विचारधारा है, लोकतंत्र ने चूंकि सभी को अधिकार दिया है और इसलिए अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो कोई करता है उसको कोई रोक नहीं सकता।
हिंदू महासभा का दावा है कि इस मूर्ति के लिए 5 लोगों ने पैसे दिए और इसे तैयार करवाया। इस पर कितना खर्चा आया यह महासभा बताने को तैयार नहीं है। हिंदू महासभा का दावा है कि ग्वालियर जैसे शहर में उनके पास तकरीबन 2000 सक्रिय सदस्य हैं। वो जल्द ही मंदिर को एक बड़ा रूप देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आ सकें। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। राजपूत समाज ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में फिल्म को लेकर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है। राजस्थान में राजपूत करणी सेना ने कई सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की। राज परिवारों ने फिल्म पर बंदिश की मांग की है। जयपुर से नारायण पारेट की रिपोर्ट।
इस फिल्म को लेकर कहीं जज्बात है तो कहीं उत्तेजना, कहीं आक्रोश से भरी भीड़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। राजपूत करणी सेना ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। करणी सेना का आरोप है कि फिल्म निर्माता ने वायदा खिलाफी की है। इस फिल्म के विरोध में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र में भी राजपूत समाज ने प्रदर्शन किए हैं। चित्तौड़ की रानी पद्मनी के किरदार पर जब कोई 10 माह पहले संजय लीला भंसाली जयपुर में शूटिंग करने आए तो करणी सेना ने भारी हंगामा किया। फिल्म निर्माता को शूटिंग बंद करनी पड़ी थी, लेकिन अब फिल्म बनकर तैयार हो गई तो विरोध का दायरा भी बढ़ गया है। जयपुर के पूर्व शाही परिवार की दिया कुमारी कहती है, ये फिल्म उनके जज्बात को ठेस पहुंचाती है।
क्योंकि ये जो हमारी ऐसी महिला जो हमारे पूरे राजस्थान में इनकी कहानियों के पीछे हम लोग बड़े हुए हैं, रानी पद्मिनी की कहानी किसने नहीं सुनी है। 16,000 महिलाओं ने जौहर किया है, इतनी बड़ी चीज है। इमोशनली क्या हुआ होगा उनके साथ, क्या बीती होगी उनपे जो उन्होंने ये कदम उठाया। इसके पीछे अगर हम लोग चुपचाप रहे और जो मर्जी आए, चाहे कोई भी प्रोड्यूसर आके कुछ भी इस कहानी को तोड़ मरोड़ के एक रोमांटिक एंगल दे, और वो भी किसके साथ, एक इन्वेडर के साथ। मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है कि इस तरह की स्टोरी बन रही है और वो भी रानी पद्मिनी के बारे में।
राजस्थान ने अपने कला एवं संस्कृति विभाग को फिल्म की विषय वस्तु देखने को कहा है। इस बीच कोटा में करणी सेना ने एक सिनेमाघर में तोड़फोड़ की है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कहते हैं, पद्मिनी की छवि पर आंच नहीं आने दी जाएगी, लेकिन कानून तोड़ने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
अभी केवल हमारा काम इतना ही है कि न तो कोई रिलीज हुई न कोई सवाल हुआ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो हमारा नैतिक दायित्व है उसको मेंटेन करना, क्योंकि हम जहां पद्मिनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगा ये भी हम इसको पसंद नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं पसंद करेंगे इसकी आड़ लेकर के कोई हिंसा को उतार हो जाए और कार्यक्रम का कोटा में जिस प्रकार का उन्होंने प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
करणी सेना के उपाध्यक्ष महिपाल सिंह कहते हैं, संजय लीला भंसाली ने वायदा खिलाफी की है
कि इन्होंने बिना पूछे बिना बताए 1 दिसंबर की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। ऊपर से गाने अनाउंस कर रहे हैं, गाने रिलीज कर रहे हैं, ये सब चीजें आप सबके सामने हो रहा है।
इस बीच राजपूत समाज के साथ विभिन्न जाति संगठन भी आ खड़े हुए हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन जैनुल अबेदीन ने राजपूत समाज का समर्थन किया है। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह कहते हैं, 18 राज्यों में सिनेमाघरों से फिल्म ना दिखाने को कहा गया है। राजस्थान के गढ़ किले और महल बॉलीवुड को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं, इस पर बहुतेरी फिल्में भी बनी है, लेकिन किसी फिल्म पर ऐसा विवाद पहली बार सामने आया है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शताब्दी वर्ष। कुछ लोग उन्हें भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं तो कुछ उन्हें निरंकुश शासक। इतिहास किस तरह से याद करता है इंदिरा गांधी को, इस शनिवार 18 नवंबर को बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर।
कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में आशंकाओं और अनिश्चितता का माहौल है। आम लोगों को फौज के अगले कदम का इंतजार है। जैसा कि आप जानते हैं, हरारे में कल सेना ने सरकारी टीवी चैनल और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति मुगाबे को नजरबंद कर दिया। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
जिम्बाब्वे के शहरियों में इस बात को लेकर आशंका है कि सेना अपना अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएगी। मंगलवार को राष्ट्रपति को नजरबंद करने के बाद एक सैनिक अधिकारी ने घोषणा की थी कि रॉबर्ट मुगाबे और उनका परिवार सुरक्षित है। बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा की मुगाबे से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद सेना के साथ मध्यस्थता की कोशिश जारी है। दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री राष्ट्रपति मुगाबे और जिम्बाब्वे के सैनिक अधिकारियों से मिलने वाले हैं। साथ ही क्षेत्रीय संगठन साउदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी या SADC की इसी मसले पर एक बैठक हो रही है। कोशिश हो रही है कि देश में एक मिलीजुली सरकार बनाई जाए। सेना, राजनीतिक दलों और मुगाबे के बीच मध्यस्थता में चर्च के एक बड़े पादरी फादर फिडिलस मुको नोरो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुगाबे की शर्त है कि उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने दिया जाए। जबकि मध्यस्थ चाहते हैं कि 93 साल के मुगाबे, जो ब्रिटेन से देश को 1980 में मिली आज़ादी के बाद से सत्ता में मौजूद हैं, रिटायरमेंट ले लें। निक बुंगवावा लंदन में जानू पीएफ के प्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं कि ये हालात रॉबर्ट मुगाबे की बीवी ग्रेस की वजह से पैदा हुए हैं।
She accelerated the events that happened. She insulted and denigrated the military. She attacked commanders.
उन्होंने उन हालात को बढ़ावा दिया जो आज पैदा हुए हैं। उन्होंने सेना कमांडरों और नौकर शाहों पर शाब्दिक प्रहार किए, जिससे सेना को लगा कि उन्होंने हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। और चूंकि संविधान के मुताबिक हमारे यहाँ प्रथम महिला की कोई अवधारणा नहीं है, तो एक तरह से उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों को हथिया लिया था, जिसकी इजाज़त किसी कीमत पर भी नहीं दी जा सकती। मुगाबे की पार्टी के एक प्रतिनिधि के शब्द। आज़ादी की लड़ाई में मुगाबे के साथ हिस्सा लेने वाले सैनिकों का कहना है कि मुगाबे को अब विदा ले लेना चाहिए। आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले सैनिकों के संगठन के सेक्रेटरी जनरल विक्टर माते मंदादा ने हरारे में कहा,
वी अर्ज दैट रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे शुड बी रिकॉल्ड फ्रॉम हिज रोल।
मैं अपील करता हूं कि रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति और जानू पीएफ के मुखिया के पद से वापस बुलाया जाए। हम चाहते हैं कि अगले चुनाव में सभी दल बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिम्बाब्वे के एक पूर्व सैनिक के शब्द। एक बीबीसी संवाददाता का कहना है कि पार्टी के वो लोग जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी से सत्ता दूसरों के हाथ में जाए। जबकि मुगाबे पार्टी में अपनी पत्नी ग्रेस को मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति इमरसन मोनंगुआवा को मुअत्तल कर दिया था, जो पार्टी प्रमुख पद के मजबूत दावेदार थे।
अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे में आशंकाओं और अनिश्चितता का बादल के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। और अब कार्यक्रम में बारी है आपकी चिट्ठियों की,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का दोस्तों, और
मैं हूँ वंदना।
वंदना का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। वंदना को बहुत मुश्किल से स्टूडियो में मिलाया हूँ, बहुत व्यस्त हैं आजकल, टेलीविजन के कार्यक्रमों की इंचार्ज हैं, इसलिए समय थोड़ा कम दे पाती हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है देती जरूर।
लेकिन रेडियो जिसको बोलते हैं कि दिल में एक अलग कोना है जो सिर्फ रेडियो के लिए है।
जी हाँ, तो आज मैं देख रहा हूँ काफी चिट्ठियाँ आपके पास हैं।
जी, सबसे पहले अगर मैं लेना चाहूँ, काफी सारी जो चिट्ठियाँ और ईमेल आई हैं वो आई हैं कवि कुंवर नारायण जी के निधन के बारे में, जो
कल हमने कार्यक्रम किया था। जी,
तो गौरी सेन लखनऊ से लिखती हैं, कहती हैं नियमित श्रोता हूं और कहा है कि जो कवि मंगलेश डबराल जी से राजेश जोशी की बातचीत थी इन्हें पसंद आई, और इसके अलावा मोहनलाल शर्मा ने बाद में जो कविता पाठ किया वो भी भीतर तक मन को छू गया।
जी, और भी इसके अलावा
जी बिल्कुल बहुत सारी हैं, सब तो शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन नवीन पांडे गोरखपुर से हैं, उन्होंने भी कहा कि मोहनलाल जी द्वारा प्रस्तुत जो कार्यक्रम था और जो कविता उन्होंने कही वो इनके दिल को छू गई, और इन्होंने चंद पंक्तियां भी लिखी हैं। लिखा है कि नफरत भरे आज में जो थोड़ी मोहब्बतों की आस है, ऐसी उम्मीद का आधार हमारा साहित्यिक
इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीष पांडे हैं लखनऊ से, उन्होंने भी इसी का जिक्र किया है कि जिस तरह से अंतिम श्रद्धांजलि दी गई वो इन्हें काफी पसंद आई। प्रदीप नेगी रैंस चोपता चमोली उत्तराखंड से, इन्होंने भी इसी विषय पर चिट्ठी लिखी और कहा है कि आपकी तरफ से दी गई श्रद्धांजलि दिल को छू गई और कवि डबराल से की गई बातचीत अच्छी लगी।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को पसंद किया। कवि मंगलेश डबराल से बात करने का खास मकसद ये था कि जितने संवेदनशील कवि कुंवर नारायण थे उतने ही संवेदनशील कवि मंगलेश डबराल भी हैं। वो कविता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हमारे समाज को समझते हैं। फिर मोहनलाल शर्मा ने जिस तरह से पढ़ी वो कविता, वो खुद मुझे बहुत पसंद आई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कवि का जाना किसी समाज के लिए बहुत बड़ी घटना होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे हिंदी समाज की विडंबना है कि इसको बहुत बड़ी घटना नहीं माना जाता।
जी, तो अगली चिट्ठी है जम्मू से,
अंग्रेजी में लिखी हुई है, लिफाफे में,
बंसी लाल जी इनका नाम है
जी।
इन्होंने कहा है कि अंग्रेज हिंदी लिखने में इन्हें परेशानी होती है, इसलिए इन्होंने कहा है कि इन्हें अनुमति दी जाए कि ये अपनी बात अंग्रेजी में ही रख दें।
जरूर।
विवेचना की बात की है, खासकर इन्होंने शायद जिक्र किया है जो बांग्लादेश पर विवेचना हुई थी और उसका जो एक तरह से समा बांधा गया वो इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इन्होंने रेहान साहब का जिक्र किया है और दूसरा इन्होंने जिक्र किया है इंडिया बोल का, कि कैसे जो आम जो नागरिक समाज के काम होते हैं उसमें जो सेना का इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही अंग्रेजी में शब्द कहना इम्प्रेसिव। और संग संग गुनगुनाएं, ये भी उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका से जो बातचीत हुई उसमें मेस्मराइजिंग इफेक्ट।
क्या बात है, बंसीलाल भट्ट जी आप जम्मू से ये चिट्ठी लिख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे उन श्रोताओं में बंसीलाल जी हैं जो खामोश श्रोता हैं, जो चिट्ठियां नहीं लिखते, ईमेल नहीं लिखते, लेकिन सुनते गौर से हैं। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद आपका अदा करना चाहता हूं। आप चाहे अंग्रेजी में ही लिखें लेकिन हमें लिखें जरूर।
और अगला जो पोस्टकार्ड है वो है मुरारी सा गोथरा ठाकुरगंज बिहार से।
ये तो हमारे पुराने श्रोता हैं, पोस्टकार्ड भेजते हैं हमेशा, एकदम बिल्कुल।
इनकी एक शिकायत है, ये बोल रहे हैं कि राजनीति जो है आज की भारत में बहुत गंदी हो गई है, कि उसमें चर्चा करना भी मुनासिब नहीं लगता।
उसमें हम हमारी भी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मुरारी लाल जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राजनीति में जो कुछ होता है जिस रूप में होता है उसी रूप में आपके सामने रखना हमारा फर्ज है। उसमें अगर हम गुलाब की पंखुड़ियां डालेंगे या कुछ कम करके आपको बताएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाएंगे, तो शायद हम अपने जो शायद हमारा पत्रकारिता का कर्म है, जो हमारा काम है, उसके साथ हम ईमानदारी नहीं बरत रहे होंगे। इसलिए जो समाज में होता है चाहे वो बहुत नकारात्मक हो, हमको उसी रूप में दिखाना पड़ेगा। सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसको भी हम दिखाते हैं।
जी बिल्कुल। एक और जो ईमेल आया है वो है गणेश प्रसाद हुजदर का। इन्होंने लिखा है कि जो पहला विश्व युद्ध था उसमें मारे गए दो भारतीय सैनिकों का शव करीब 100 साल बाद दफनाया गया, उसका समाचार पढ़कर और सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। और उसी तरह इन्होंने कहा है कि दाऊद इब्राहिम की कहानी इन्होंने पढ़ी, शायद वेबसाइट पे पढ़ी होगी जो
जी,
आपने लिखी
जी,
है
वेबसाइट पर ही पढ़ी क्योंकि वो रेडियो पर नहीं था। हाँ, एक पुराना मेरा अनुभव था जिसके बारे में मैंने लिखा। आपको दोनों पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
एक चिट्ठी और ज्यूरिक से बहुत दूर से आई है और ये है जयेश कुमार बैद। इन्होंने शिकायत की है कि ऐसा लग रहा है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट करते हैं घूम फिर कर सिर्फ भारत सरकार को ही दोषी ठहरा देते हैं।
बैद साहब, हम जानना ये चाहते हैं, अगर बहुत हमारी मदद होगी कि आप उदाहरण देके हमें बताएं कि एक खास रिपोर्ट में भारत सरकार की आलोचना की गई और वो आलोचना करने की कोई वजह नहीं थी, तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आपस में मंथन कर सकते हैं और उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक सीधा सीधा अगर ये कहा जाएगा कि सब कुछ जो हम करते हैं वो सरकार के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे हैं आप। जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने श्रोताओं को अब चलते चलते पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपनी भेजी हुई चिट्ठियां सुन ली। कार्यक्रम में अब खेल की खबरों का वक्त नहीं है, लेकिन मुख्य समाचारों का वक्त जरूर है।
बीबीसी समाचार। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर अयोध्या विवाद सुलझाने की पहल लेकर आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न पक्षकारों और साधु संतों से मुलाकात की। दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में एक 17 साल की छात्रा का अपहरण कर उसका गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जाई यूवीसे दारियो ने सऊदी अरब में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी से मुलाकात की। इससे पहले फ्रांस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि हरीरी फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। जिम्बाब्वे की सत्ता पर सेना के काबिज होने के बाद इस संकट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिशें जारी हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्री जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और सेना प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। टोक्यो की एक यात्रा ट्रेन के 20 सेकंड पहले चलने पर जापानी ट्रेन कंपनी ने माफी मांगी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक bbchindi.com का डिजिटल पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।